दानियल की पुस्तक संख्या 198 दैवीय समागम और भविष्यवाणी संबंधी सामंजस्य। दानियल 11 दिशांक के अंतकालीन ढांचे में 150 लाख की भूमिका।
हम पोप तंत्र की रेखा, धर्मत्यागी रिपब्लिकन वाद की रेखा, धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंट वाद की रेखा और 144,000 की रेखा को दानियल अध्याय 11 के पद 40 के गुप्त इतिहास में स्थापित कर रहे हैं। हम वर्तमान में इस विषय पर विचार कर रहे हैं कि मसीह अपने लोगों को दो बार एकत्र करता है और उसके लोगों को दूसरी बार एकत्र करने के सभी चित्रण 144,000 की अंतिम मुहरबंदी की प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब सुधार की रेखा में दिव्य प्रतीक अवतरित होता है, तब प्रभु एक चुनी हुई प्रजा को एकत्र करता है जिसे उसके बाद परखा जाता है। परीक्षण की प्रक्रिया के अंत में एक बिखराव होता है जिसके बाद वो उन चुनी हुई प्रजा को दूसरी बार एकत्र करता है, यद्यपि बहुत से लोग परीक्षा में असफल होने के कारण पीछे रह जाते हैं। मसीह ने अपने बपतिस्मा के समय अपने चेलों को एकत्र करना प्रारंभ किया और क्रूसेन पर चेले बिखर गए। अपने पुनरुत्थान के बाद उसने पिंतेकोस्तिस से पूर्व अपने चेलों को दूसरी बार एकत्र किया। ये रेखा दर्शाती है कि रविवार के कानून से ठीक पहले 144,000 का दूसरा एकत्रीकरण संपन्न होता है जिसका प्रतिरूप पिंतेकोस्त है। क्रूस एक निराशा को चिन्हित करता है जिसके बाद दूसरा एकत्रीकरण होता है। क्रूस के बाद दूसरा समागम हम सब शुरू हुआ जब मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद अपने पिता से भेंट करके नीचे उतरे। जब दिव्य प्रतीक उतरता है तो परमेश्वर की प्रजा को संदेश खाना है और मसीह के उतरने के बाद उन्होंने चेलों के साथ खाया।
और ऐसा हुआ कि जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी ली, आशीर्वाद दिया, उसे तोड़ा और उन्हें दी। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया और वो उनकी दृष्टि से ओझल हो गया। लूका 24:30-31।
क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद दूसरी सभा में मसीह ने अपने शिष्यों पर पवित्र आत्मा फूंका।
अपने चेलों पर पवित्र आत्मा फूंकने और उन्हें अपनी शांति प्रदान करने का मसीह का कार्य पिंतेकुस्त के दिन बरसाई जाने वाली प्रचुर वर्षा से पहले कुछ बूंदों के समान था। भविष्यवाणी की आत्मा खंड 3:350 है।
नई 3 अप्रैल 884 की निराशा के बाद हुई दूसरी सभा में मसीह ने 843 की भूल पर से अपना हाथ हटा लिया।
वे विश्वास योग्य निराश लोग जो ये समझ नहीं पाए कि उनके प्रभु क्यों नहीं आए, अंधकार में नहीं छोड़े गए। फिर उनका मार्गदर्शन किया गया कि वे अपनी बाइबलों में भविष्यवाणी की अवधियों की खोज करें। गड़ाओं पर से प्रभु का हाथ हटा लिया गया और भूल स्पष्ट कर दी गई। उन्होंने देखा कि भविष्यवाणी की अवधियां 1884 तक पहुंचती हैं और वही प्रमाण जो उन्होंने ये दिखाने के लिए प्रस्तुत किए थे कि भविष्यवाणी की अवधियाँ 1843 में समाप्त हो गई थीं, ये सिद्ध करते थे कि वे 1884 तक पहुंची होंगी। प्रारंभिक लेखन 37।
उस निराशा के समय दूसरा स्वर्गदूत अपने हाथ में लेख लेकर अवतरित हुआ।
एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को पृथ्वी पर उतरने का आदेश दिया गया। यीशु ने उसके हाथ में एक लिखित संदेश रखा और जब वो पृथ्वी पर आया तो उसने पुकारा, बाबुल गिर पड़ा है, गिर पड़ा है। प्रारंभिक लेखन 243।
दूसरे स्वर्गदूत के आगमन से जो परीक्षण प्रक्रिया शुरू हुई थी वो एक्सेटर कैंप मीटिंग में तब समाप्त हुई जब पवित्र आत्मा उंडेला गया और संदेश ज्वार की लहर की तरह फैल गया। ये परीक्षण प्रक्रिया क्रूस के बाद स्पष्ट रूप से पहचानी गई क्योंकि पेंटेकोस्ट पर पवित्र आत्मा के उंडेले जाने से पहले कुल 50 दिनों की अवधि रही। ये अवधि पहले 40 दिनों और उसके बाद 10 दिनों से मिलकर बनी थी जिसका समापन पेंटेकोस्ट पर हुआ।
परमेश्वर के लोगों को निरंतर प्रार्थना में उसकी ओर लगे रहना चाहिए। प्रारंभिक शिष्यों ने 10 दिन विनती में बिताए थे, सभी मतभेद दूर कर दिए गए थे और वे गहन आत्म परीक्षण में पापों की स्वीकारोक्ति और त्याग में तथा पवित्र संगति में मिलकर एक हो गए थे। तब पवित्र आत्मा उन पर उतरा और मसीह की प्रतिज्ञा पूरी हुई। पवित्र आत्मा की अद्भुत बरसात हुई। अचानक स्वर्ग से प्रचंड वेग की आंधी के समान एक ध्वनि आई और जहां वे बैठे थे वो सारा घर उससे भर गया और उसी दिन उनके साथ लगभग 3,000 आत्माएं मिलाई गईं। रिव्यू एंड हेरल्ड 11 मार्च 1909।
उन 40 दिनों के दौरान मसीह उपस्थित रहकर चेलों को शिक्षा दे रहे थे और फिर वो स्वर्गारोहित हुए। इसके पश्चात आने वाले 10 दिन पवित्र आत्मा के पिंतेकुस्तीय उंडेले जाने से पूर्व की तैयारी का काल थे। क्रूस के पश्चात आने वाले शिक्षा के वे 40 दिन 19 अप्रैल 1844 से 12 अगस्त 1844 को एक्सेटर कैंप मीटिंग के आरंभ तक के समय के अनुरूप हैं। वे 10 दिन जो पिंतेकुस्त से पहले थे 12 से 17 अगस्त 1844 का प्रतिनिधित्व करते थे, जब मिलेराइट लोग सैमुएल स्नो द्वारा लाए गए मिडनाइट क्राई के संदेश पर एक हो गए। उस कैंप मीटिंग में 2 वर्ग प्रकट हुए और सभा के समापन पर केवल एक ही वर्ग ने पिंतेकुस्तीय उंडेले जाने को प्राप्त किया। उस अवधि में जिसका प्रतिनिधित्व उन 40 दिनों द्वारा किया गया, एक वर्ग ने शिक्षा ग्रहण की और दूसरे वर्ग ने शिक्षा को अस्वीकार कर दिया। जब मिडनाइट क्राई पहुंचा, तब एक वर्ग के पास तेल था, दूसरे के पास नहीं।
जब दूल्हा देर कर रहा था, वे सब ऊँघने लगे और सो गए। दूल्हे का देर करना उस समय के बीच जाने जब प्रभु की अपेक्षा की गई थी, उस निराशा और प्रतीत होने वाले विलंब का प्रतीक है। इस अनिश्चितता के समय में सतही और आधे अधूरे मन वालों की रुचि शीघ्र ही डगमगाने लगी और उनके प्रयास शिथिल पड़ गए। परंतु जिनका विश्वास बाइबल के व्यक्तिगत ज्ञान पर आधारित था, उनके पांवों के नीचे एक चट्टान थी जिसे निराशा की लहरें धोकर मिटा नहीं सकती थीं। वे सब ऊँघने लगे और सो गए। एक वर्ग उदासीनता में और अपने विश्वास का परित्याग करके, दूसरा वर्ग धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा जब तक कि अधिक स्पष्ट प्रकाश दिया जाए। फिर भी परीक्षा की रात में बाद वाले भी कुछ हद तक अपना जोश और भक्ति खोते से प्रतीत हुए। आधे अधूरे मन वाले और सतही लोग अब अपने भाइयों के विश्वास पर सहारा नहीं ले सकते थे। प्रत्येक को स्वयं ही टिकना या गिरना था। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 395।
पेंटेकोस्ट से पहले के 10 दिनों के दौरान और एक्सेटर शिविर सभा की अवधि में मसीह ने दूसरी बार उन लोगों को इकट्ठा किया जो उसका संदेश संसार तक ले जाने वाले थे। जब 22 अक्टूबर 1844 को तीसरा स्वर्गदूत उतरा, तो छोटा झुंड फिर से निराश होकर बिखर गया। परंतु 22 अक्टूबर 1844 को ही शिक्षा का एक काल आरंभ हुआ, जब मसीह अपनी प्रजा को परम पवित्र स्थान में ले गया। 1839 में प्रभु ने दूसरी बार अपना हाथ बढ़ाकर उन लोगों को फिर से इकट्ठा किया जिन्हें वो 19 अप्रैल और 22 अक्टूबर 1844 की निराशाओं से निकालकर पहले ही इकट्ठा कर चुका था। एक तो सौर को निर्देश दिया गया निर्देश इस संदेश के संबंध में था जो तीसरे स्वर्गदूत के हाथ में था जब वो उतरा। परंतु महान निराशा के बाद आई संदेह और अनिश्चितता की अवधि में बहुत से लोग भटक गए। 1839 तक उस छोटे बिखरे हुए झुंड को एकत्र करने का कार्य आरंभ हुआ, परंतु उस इतिहास द्वारा जो दर्शाया गया वो 8536 की पराजय और आधुनिक इसराइल के लिए पहला कादेशा था। 144,000 की भावी विजय और दूसरे कादेश में उनके कार्य में विलंब हो गया। जब 11 सितंबर 2001 को प्रभु अवतरित हुए, तो उन्होंने अपने अंतिम दिनों के लोगों को एकत्र किया, उन्हें खाने के लिए अपना आत्मिक भोजन दिया और जब उन्होंने अंतिम वर्षा का छिड़काव शुरू किया तो उन पर अपनी आत्मा फूंकी और उन्होंने एक परीक्षा की प्रक्रिया भी आरंभ की जो 18 जुलाई 2020 तक चली, जब उनके अंतिम दिनों के लोग निराश हुए और तितर बितर हो गए। 3.5 दिन तक वे सड़क पर मृत पड़े रहे। 3.5 दिन भी और मसीह के समय की 40 दिनों की अवधि भी मरुभूमि का प्रतीक है। ये 19 अप्रैल 1844 से 12 अगस्त 1844 तक की अवधि द्वारा भी और 22 अक्टूबर 1844 से 1800 विनात तक की अवधि द्वारा भी दर्शाया गया है। जुलाई 2023 से लेकर रविवार के कानून तक, जो पेंटिकोस्ट से पूर्व के 10 दिनों का समय है, एक्सेटर में 12 अगस्त से 17 अगस्त तक का कैंप मीटिंग और 849 से 863 से सिद्ध तक की अवधि, ये सभी एक दूसरे के अनुरूप है। वे परमेश्वर के अंतिम दिनों के लोगों के दूसरे एकत्रीकरण की अवधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। निराशा से लेकर पवित्र आत्मा के उंडेले जाने तक की अवधि 2 अलग अलग अवधियों में विभाजित है। दानियेल अध्याय 11 की 40वीं आयत के छिपे इतिहास में धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद, नाम मात्र का कलीसिया, लाओदीकिया का सेवेंथ डे एडवेंटिज्म, नाम मात्र का एडवेंटिज्म,
कैथोलिक धर्म और सच्चा प्रोटेस्टेंटवाद, इन सब की धाराएं प्रस्तुत हैं। ये चार धाराएं सच्चे प्रोटेस्टेंटवाद को अजगर, यहूदा, पशु, कैथोलिक धर्म और झूठे भविष्यद्वक्ता धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद के त्रिगुणी संघ के साथ विवाद में दर्शाती हैं। उसी गुप्त इतिहास के भीतर धर्मत्यागी रिपब्लिकनवाद की रेखा का भी चित्रण किया गया है। उस रेखा के भीतर डेमोक्रेट, अजगर और रिपब्लिकन दलों पशु की प्रतिमा के बीच एक विवाद प्रदर्शित किया गया है। रिपब्लिकन दल को पशु की प्रतिमा की रचना करने में अग्रणी होना है और ऐसा करते हुए वो पशु पोपतंत्र की भविष्यद्वक्तीय विशेषताओं को प्रकट करता है। परमेश्वर के वचन में पोपतंत्र, जो उत्तर का राजा और साथ ही वो पशु भी है, को मिस्र अजगर दिया गया है उन सेवाओं के प्रतिफल स्वरूप जो उसने परमेश्वर द्वारा न्याय के एक उपकरण के रूप में प्रयुक्त होने में प्रदान की है।
हे मनुष्य के पुत्र, बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने सोर के विरुद्ध अपनी सेना से बहुत भारी परिश्रम करवाया। हर सिर गंजा हो गया और हर कंधा छिल गया, तो भी जो सेवा उन्होंने उसके विरुद्ध की, उसके लिए न उसे और न उसकी सेना को सोर से कोई मजदूरी मिली। इसलिए प्रभु यहोवा यों कहता है, देख, मैं बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर को मिस्र का देश दे दूंगा। वो उसकी भीड़ को ले ले, उसका लूट का माल ले लेगा और उसका शिकार ले लेगा, और ये उसकी सेना के लिए मजदूरी होगी। जिस परिश्रम से उसने उसके विरुद्ध सेवा की, उसके बदले मैंने उसे मिस्र का देश दे दिया है, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए काम किया है। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, उसी दिन मैं इज़राइल के घराने का सींग फूटने दूंगा और मैं तेरे मुख को उनके बीच खोल दूंगा और वे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ। यहेजकेल 29:18-21।
नबूकदनेस्सर, जो उक्त खंड में उत्तर का राजा है, को उसकी मजदूरी के रूप में मिस्र की भूमि दी जाती है। इस प्रकार ये द्योतक है कि अंतिम दिनों में पापाई सत्ता को मिस्र दिया जाता है, जो कि अजगर है, अर्थात 10 राजा यानी संयुक्त राष्ट्र, जो थोड़े समय के लिए अपना 7वां राज्य पशु को सौंप देने पर सहमत होते हैं।
और जो 10 सींग तूने उस पशु पर देखे, वे उस वेश्या से घृणा करेंगे और उसे उजाड़ और नग्न कर देंगे और उसका मांस खाएंगे और उसे आग से जला देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी हृदयों में अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ये बात डाल दी है कि वे एक मन हों और अपना राज्य उस पशु को दे दें जब तक कि परमेश्वर के वचन पूरे ना हो जाए। प्रकाशित वाक्य 17:16-17।
ये भविष्य सूचक भुगतान दानियल अध्याय 11 पद 42 में भी दर्शाया गया है।
वो देशों पर भी अपना हाथ बढ़ाएगा और मिस्र का देश बच न सकेगा। दानियल 11 फिरा पर
पापत्व पश्चात वर्षा के समय अजगर की शक्ति पर विजय पाता है, क्योंकि ये चुकौती उस दिन में पूरी की जाती है जब परमेश्वर इसराइल के घराने का सींग फूटने देता है। ये वही वर्षा है जो परमेश्वर के इसराइल को अंकुरित करती है, और वह दिन 11 सितंबर बाहुआ सितंबर को आरंभ हुआ, जो पूर्वी पवन का दिन था।
वो याकूब की संतान को जड़ पकड़ाएगा, इज़राइल पल्लवित और पुष्पित होगा और पृथ्वी के मुख को फल से भर देगा। क्या उसने उसे उसी प्रकार मारा है जैसे उसने उन्हें मारा जो उसे मारते थे, या क्या वो उसी प्रकार मारा गया जैसे वे जो उसके द्वारा मारे गए? माप तोल से जब वो अंकुरित होता है, तू उससे वाद विवाद करेगा। वो पूर्वी पवन के दिन अपनी कठोर हवा को रोक देता है, इसलिए इसी से याकूब का अधर्म शुद्ध किया जाएगा, और उसका पाप दूर करने का सारा फल यही है, जब वो वेदी के सब पत्थरों को छूने के पत्थरों के समान कर देगा जो टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, तब उपवन और प्रतिमाएं खड़ी न रहेंगी। यशाया 27:9।
जब पिछली वर्षा उंडेली जा रही होती है, तब मिस्र पोपिया पशु को दे दिया जाता है। पिछली वर्षा का छिड़काव तब आरंभ हुआ जब पूरब की हवा, जो तीसरे हाय के इस्लाम का प्रतिनिधित्व करती है, 11 सितंबर 2001 को रोक दी गई, अर्थात संयमित कर दी गई। तब वर्षा इसराइल पर, जब वे कौपलित होने लगे, माप कर छिड़की हुई बरसाई जाने लगी। संडे कानून पर जब तीसरा हाय फिर आता है, तब पिछली वर्षा बिना माप के उंडेली जाती है, 11 सितंबर 2001 और शीघ्र आने वाले संडे कानून के बीच याकूब का अधर्म दूर किया जाता है, और इब्रानी शब्द
दूर किया जाता है का अर्थ प्रायश्चित किया गया है। संडे कानून पर पोपिया पशु को मिस्र अजगर दे दिया जाता है, क्योंकि वे 10 राजा पशु की एक विश्वव्यापी मूर्ति बनाकर पोप तंत्र के साथ व्यभिचार करते हैं।
रविवार के कानून से पहले 144,000 की मुहरबंदी। किस समय? धर्मत्यागी रिपब्लिकन सीन धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंट सीन के साथ मिलकर पशु की प्रतिमा बनाता है और उस भविष्य सूचक रेखा में रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी पर प्रबल होती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी अजगर की शक्ति है और रिपब्लिकन पार्टी वो शक्ति है जो पापसी की प्रतिमा बनाती है। पृथ्वी के पशु के भविष्य सूचक इतिहास में डेमोक्रेटिक पार्टी का अंत और रिपब्लिकन पार्टी का अंत पहचाना जाता है। ये दोनों पार्टियां मिलकर रिपब्लिकन वाद का सींग बनती है, लेकिन वे एक आंतरिक संघर्ष का संकेत देती है जो पृथ्वी के पशु के पूरे इतिहास में चलता रहता है। वो सींग रिपब्लिकन पृथ्वी के पशु के दो सींगों का एक आंतरिक सूक्ष्म प्रतिरूप समेटे हुए है। मेद और फारस के राज्य की गवाही में वही अंतिम सींग था जो ऊपर उठकर अधिक ऊंचा हो गया, और अमेरिकी इतिहास में डेमोक्रेटिक पार्टी पहले शुरू हुई परंतु अंत में रिपब्लिकन पार्टी ऊपर उठती है और डेमोक्रेट्स पर हावी हो जाती है। अंतिम वर्षा के इतिहास में जो 11 सितंबर 2001 को शुरू हुई, वैश्वीकरण समर्थक अजगर से प्रेरित डेमोक्रेट्स प्रकाशित वाक्य समर्थ के अध्याय 11 में वर्णित अथा कुंड से निकलकर ऊपर आए और 2020 का अनाचलाक चुराकर रिपब्लिकनों को मार गिराया। ट्रंप और रिपब्लिकनों के खिलाफ उनका युद्ध 2015 में तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की, और उसके बाद वो और भी अधिक तीव्र होता गया। जब डेमोक्रेट्स ने 2020 में चुनाव चुरा लिया तब उन्होंने पेलोसी ट्रायल्स शुरू किए, लेकिन जब ट्रंप ने 2022 में अपना तीसरा अभियान घोषित किया तो डेमोक्रेट्स पर भय छा गया और उनका क्रोध और बढ़ गया, और वे तब ट्रंप और उनके समर्थकों के खिलाफ प्रचंड क्रोध के साथ टूट पड़े, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका समय कम था। उन्होंने उसकी मृत्यु का जश्न मनाया, लेकिन जब वो उठ खड़ा हुआ तो उन पर गहरा भय छा गया।
और जब वे अपनी गवाही पूरी कर लेंगे तो अथाह गर्त से ऊपर आने वाला पशु उनके विरुद्ध युद्ध करेगा और उन पर प्रबल होकर उन्हें मार डालेगा, और उनकी लाशें उस बड़े नगर की सड़क पर पड़ी रहेंगी जिसे आत्मिक अर्थ में सदोम और मिस्र कहा जाता है, जहां हमारे प्रभु को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। और लोगों, कुलों, भाषाओं और जातियों के लोग 3.5 दिन तक उनकी लाशों को देखेंगे और उनकी लाशों को कब्रों में रखने नहीं देंगे, और जो पृथ्वी पर बसते हैं वे उनके कारण आनंदित होंगे और खुशियां मनाएंगे और एक दूसरे को उपहार भेजेंगे, क्योंकि इन दो भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी पर बसने वालों को कष्ट दिया था, और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उनमें प्रवेश कर गई और वे अपने पैरों पर खड़े हो गए, और जिन्होंने उन्हें देखा उन पर बड़ा भय छा गया। प्रकाशित वाक्य 10:10।
डेमोक्रेटिक पार्टी के अंत को चिन्हित करने वाली अवधि 2021 में बाइडेन के शपथ ग्रहण से लेकर 2025 में ट्रंप के शपथ ग्रहण तक है। ये अवधि पेलोसी ट्रायल्स से शुरू हुई जो पूरी तरह असंवैधानिक और पूर्णतः राजनीतिक स्वभाव के थे। वो इतिहास जो 1989 में अंत के समय से 6 राष्ट्रपति की मृत्यु से लेकर उस 8 राष्ट्रपति तक जो 7 में से है का प्रतिनिधित्व करता है, राजनीतिक मुकदमों पेलोसी ट्रायल्स से शुरू हुआ और राजनीतिक लक्ष्यों के उलट जाने पर डेमोक्रेटिक पार्टी की मृत्यु तथा पेलोसी ट्रायल्स के दूसरे दौर के साथ समाप्त होता है। इस इतिहास का चित्रण प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय में मिलता है, जिसकी पहली पूर्ति फ्रांसीसी क्रांति में हुई। फ्रांसीसी क्रांति गिलोटिन प्रकार के राजनीतिक संघर्ष का शास्त्रीय ऐतिहासिक उदाहरण है, जिसमें एक शासक दल दूसरे को मार डालता है और फिर वही शासक सत्ता स्वयं उखाड़ फेंकी जाती है और उत्पीड़ित होती है। बाइडेन के शपथ ग्रहण और पेलोसी ट्रायल्स से लेकर ट्रंप के दूसरे शपथ ग्रहण और पेलोसी ट्रायल्स के उलटने तक की अवधि डेमोक्रेटिक पार्टी के अंत को चिह्नित करती है, और ये उस समय को भी चिह्नित करती है जब ट्रंप उन कार्यकारी आदेशों के एक सेट को पुनः लागू करते हैं जिनकी मिसाल एलियन एंड सेडिशन एक्ट्स है। उन कार्यकारी आदेशों का कार्यान्वयन दूसरे पेलोसी ट्रायल्स की शुरुआत करेगा और उस अवधि की शुरुआत को चिह्नित करेगा जब पशु की छवि की स्थापना पूरी गंभीरता से शुरू होती है। वो अवधि संडे लॉ के प्रवर्तन पर समाप्त होती है। इसलिए ये अवधि एलियन एंड सेडिशन एक्ट्स के समानांतर कार्यकारी आदेशों से शुरू होकर संडे लॉ पर समाप्त होती है। वहीं पर रिपब्लिकन पार्टी का अंत होता है।
डेमोक्रेटिक पार्टी और फिर रिपब्लिकन पार्टी के समापन का प्रतिनिधित्व करने वाले दोनों कालखंड भविष्यवाणी के अनुसार परस्पर जुड़े हुए हैं और उनका निरूपण 1776 से 1758 तक थे 22 वर्षों के काल से होता है। उस काल के तीन मार्ग जिन हैं 1776 की स्वतंत्रता की घोषणा, 13 वर्ष बाद संविधान और उसके बाद 1758 तक के विदेशी और राजद्रोह अधिनियम। ये तीनों मार्ग जिन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियों की रेखा में अपनी पूर्ति पाते हैं, यद्यपि दूसरे और तीसरे मार्ग जिन का अनुप्रयोग प्रत्येक रेखा में भिन्न बिंदु पर होता है। अगले लेख में हम इन मार्ग चिन्हों और उनकी पूर्तियों की व्याख्या करेंगे।
यहाँ केवल दो ही पक्ष हैं। शैतान अपनी कुटिल छलपूर्ण शक्ति से कार्य करता है और प्रबल भ्रमों के द्वारा वो उन सब को फंसा लेता है जो सत्य में स्थिर नहीं रहते, जिन्होंने अपने कान सत्य से फेर लिए हैं और किस्सों कहानियों की ओर मुड़ गए हैं। स्वयं शैतान सत्य में स्थिर न रहा, वो अधर्म का रहस्य है। अपनी कपटता से वो अपनी आत्मानाशक भूलों को सत्य का रूप दे देता है। यही उनकी छलने की शक्ति निहित है, क्योंकि वे सत्य की नकल मात्र हैं। इसी कारण स्पिरिचुअलिज्म, थियोसोफी और ऐसे अन्य छल मनुष्यों के मनों पर इतना अधिकार पा लेते हैं। यही शैतान की माहिर चाल है। वो मनुष्य का उद्धारकर्ता, मानव जाति का हितैषी होने का दिखावा करता है और इस प्रकार वो अपने शिकारों को और भी आसानी से विनाश की ओर लुभा ले जाता है। परमेश्वर के वचन में हमें चेतावनी दी गई है कि सुरक्षा की कीमत निद्राहीन चौकसी है। केवल सत्य और धर्म के सीधे मार्ग में ही हम प्रलोभक की शक्ति से बच सकते हैं, परंतु संसार फंसा हुआ है। शैतान अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनगिनत योजनाएं और तरीके गढ़ने में अपनी कला का प्रयोग करता है। छलावरण उसके लिए एक महीन कला बन गया है और वो प्रकाश के स्वर्ग दूत के वेश में काम करता है। केवल परमेश्वर की दृष्टि ही उसकी उन योजनाओं को भांपती है जिनसे वो झूठे और विनाशक सिद्धांतों द्वारा संसार को दूषित करता है। ऐसे सिद्धांत जो ऊपर से वास्तविक भलाई का रूप लिए होते हैं, वो धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करने और धार्मिक जगत में एक प्रकार की दासता लाने का काम करता है। संस्थाएं और संगठन यदि परमेश्वर की शक्ति से न संभाली जाएं, तो शैतान के निर्देशन में काम करेंगे ताकि मनुष्यों को मनुष्यों के नियंत्रण के अधीन कर दें और धोखा और छल सत्य के लिए उत्साह तथा परमेश्वर के राज्य की उन्नति के जोश का रूप धारण कर लेंगे। हमारे व्यवहार में जो कुछ दिन के उजाले जितना खुला नहीं है, वह बुराई के राजकुमार की विधियों से संबंधित है। उसकी विधियां उन सेवंथ डे एडवेंटिस्ट्स के बीच भी अपनाई जाती हैं जो उन्नत सत्य का दावा करते हैं। यदि मनुष्य उन चेतावनियों का प्रतिरोध करते हैं जो प्रभु उन्हें भेजता है, तो वे बुरी प्रथाओं के भी नेता बन जाते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के विशेष अधिकारों का उपयोग करने का दावा करते हैं। वे मनुष्यों के मनों को नियंत्रित करने के प्रयास में वो करने का दुस्साहस करते हैं जो स्वयं परमेश्वर भी नहीं करता। वे अपनी ही विधियां और योजनाएं लागू करते हैं और ईश्वर के विषय में अपनी भ्रांत धारणाओं के कारण वे दूसरों के सत्य पर विश्वास को दुर्बल कर देते हैं और ऐसे मिथ्या सिद्धांत ले आते हैं जो खमीर की तरह काम करके हमारी संस्थाओं और कलीसियाओं को कलुषित और भ्रष्ट करेंगे। जो कुछ भी मनुष्य की धर्मनिष्ठा, न्याय संगतता और निष्पक्ष निर्णय की धारणा को नीचे गिराता है, कोई भी उपाय या उपदेश जो परमेश्वर के मानवीय प्रतिनिधियों को मानवीय मन के नियंत्रण में ले आए, वे उनके परमेश्वर पर विश्वास को क्षति पहुंचाता है। ये आत्मा को परमेश्वर से अलग कर देता है, क्योंकि ये अडिग सत्य निष्ठा और धर्मनिष्ठा के मार्ग से भटका देता है। परमेश्वर किसी भी ऐसी व्यवस्था को न्यायोचित नहीं ठहराएगा जिसके द्वारा मनुष्य अपने सह मनुष्यों पर तनिक भी शासन करे या उन्हें उत्पीड़ित करे। पतनशील मनुष्य की एकमात्र आशा यही है कि वो यीशु की ओर देखे और उन्हें एकमात्र उद्धारकर्ता अफ्रे के रूप में स्वीकार करे। जैसे ही मनुष्य अन्य मनुष्यों के लिए कठोर नियम गढ़ना शुरू करता है, जैसे ही वो उन्हें अपने मन के अनुसार जोतकर और हाँककर चलाने लगता है, वो परमेश्वर का अपमान करता है और अपनी आत्मा तथा अपने भाइयों की आत्माओं को संकट में डाल देता है। पापी मनुष्य को आशा और धार्मिकता केवल परमेश्वर में ही मिल सकती है, और कोई भी मनुष्य उतनी ही देर तक धर्मी रहता है जितनी देर वो परमेश्वर पर विश्वास रखता है और उससे अपना जीवन संबंध बनाए रखता है। मैदान के फूल की जड़ मिट्टी में होनी चाहिए, उसे वायु, ओस, वर्षा और धूप चाहिए। ये तभी फलता फूलता है जब इसे ये लाभ मिलते हैं, और ये सब परमेश्वर से ही आते हैं। मनुष्यों के साथ भी ऐसा ही है। आत्मा के जीवन के पोषण के लिए जो कुछ चाहिए वो हम परमेश्वर से ही पाते हैं। हमें चेताया गया है कि हम मनुष्य पर भरोसा न करें और न ही शरीर को अपना बल माने। जो ऐसा करते हैं उन सब पर शाप घोषित किया गया है। 1883 की सामग्री। फेडल यूरोवान थर्टल यूरोवान थोत्री।